ओम शांति। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे ओम शांति। लगता है सबको जल्दी भूख लग गया। अच्छा, एक बार दिल से बोलिए ओम शांति। इतने में तो डाइनिंग हॉल तक आवाज नहीं पहुंचेगी। फिर से बोलिए, जोर से बोलिए ओम शांति। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? कैसा चल रहा है आपका सेशन? और कैसा लग रहा है आप सभी को आबू में आके? अच्छा, सवेरे के सत्र से पहले विधात्री दीदी ने एक आपको एक्सप्रेशन से जताने का एक एक्टिविटी कराया था, तो अगर आप एक दूसरे को बताना चाहें कि कैसा लग रहा है तो कैसे इशारा करेंगे? कैसे करेंगे? अपना हाथ फैलाकर बताइए कैसा लग रहा है। अच्छा, अपना हाथ ऊपर करिए, अपनी उंगली को ऐसे करिए और एक दूसरे को देखकर बोलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, वाह वाह, हम तो धन्य हो गए यहां आकर। जरा बोलिए तो सही, मेरे तरफ नहीं, एक दूसरे के तरफ देखिए, हम तो धन्य हो गए यहां आकर। और ये भाई साहब मोबाइल में लगे हुए हैं। मोबाइल कहीं नहीं जाने वाला। तो आइए इस प्रशासक वर्ग के इस सम्मेलन के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में हम सभी एक बहुत ही सुंदर विषय को लेकर, क्योंकि सशक्त भारत के लिए सशक्त प्रशासन और सशक्त प्रशासन के लिए कर्मयोग, इस थीम को लेकर जो शुरुआत विज्ञान भवन में 13 फरवरी को हुआ, इसी कड़ी में समस्त भारत में ये कैंपेन के रूप में कार्यक्रम चल रहे हैं। और आज आबू के इस पावन धरनी पर ज्ञान सरोवर एकेडमी में इस कॉन्फ्रेंस में जो दूसरे दिन के दूसरे सत्र का आज का हमारा विषय है, वो हमारे आत्मसशक्तिकरण के लिए बहुत ही एक आत्मा का मूल और नैसर्गिक जो गुण है वो क्या है? शांति। वो शांति हमारे विचारों में, वो शांति हमारे कर्म में और वो शांति हमारे वाणी में। इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज की हमारी मुख्य वक्ता दिल्ली से पधारी हैं, प्रशासक सेवा प्रभाग की आप रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, आदरणीय बीके लक्ष्मी दीदी जी। हम जोरदार तालियों से आपका मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। साथ ही साथ अभी के इस सेशन में हमारे सम्माननीय अतिथि देवी भ्राता जी श्री नर्मदेश्वर लाल जी पधारे हैं। आप बिहार प्रशासनिक सेवा के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप प्रधान सचिव हैं। भाई साहब का भी हम मंच पर जोरदार तालियों से, दिल से और हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अभी हम सभी 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, लाल लाइट होगा और फिर हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे।
मन के आंगन में शांति हो, हर विचार उजाला हो, सकारात्मकता की किरणों से जीवन मधुबन वाला हो, मन की गहराई से निकले हर संकल्प च
परम शक्ति परमात्मा के आवाहन के पश्चात अब हम मंच पर उपस्थित आदरणीय दीदी जी और भाई साहब का स्वागत करने हम आमंत्रित करते हैं बीके प्राची बहन जी और बीके रीना बहन जी को, जो गुलदस्ते एवं तिलक विधि के द्वारा स्वागत करेंगे। और आप सभी अपने अपने स्थानों पर अपने पावन कमल हस्तों से ताली बजाकर हमारे महानुभावों का स्वागत करेंगे, क्योंकि स्वागत और सम्मान ये भारत की अनूठी परंपरा है। ये सम्मान है परमात्मा का, ये सम्मान है परमात्मा के दिव्य ज्ञान का, ये सम्मान है उन रत्नों का जिन्होंने अपने जीवन में ईश्वरीय ज्ञान रत्न को धारण किया है। और अभी जो हमारी वक्ता हैं, वो इस विषय की जीती जागती उदाहरण हैं, क्योंकि जब मैं उनका प्रोफाइल देख रहा था तो हम जिस कर्म योग की बात करते हैं, आप बचपन में ही इस ईश्वरीय ज्ञान में आई, इस संस्थान से जुड़ी और लगभग 42 वर्षों से आप इस ईश्वरीय सेवा में, भारत माता की सेवा में, परमात्मा की सेवा में और समाज की सेवा में अपना जीवन आपने समर्पित कर दिया। आप बाल ब्रह्मचारिणी हैं, आपका एकेडमिक जो एक प्रोफाइल है वो भी बहुत ही साउंड है। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएट किया और फिर आप गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट में लगभग 22 वर्षों तक LNJP हॉस्पिटल में एज ए GNM आपने सरकारी जॉब किया। 2003 में आपने VRS लिया और पूर्ण रूप से इस सेवा में समर्पित होकर आप आज एक ब्रह्मा कुमारीज की सीनियर फैकल्टी के रूप में कार्यरत हैं। ब्रह्मा कुमारीज का हमारा नॉर्थ इंडिया का कैंपस है ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जो दिल्ली गुड़गांव से सटे हुए मानेसर से थोड़ा आगे है पटौदी रोड में, वहां की भी आप सीनियर फैकल्टी हैं। और अलविदा तनाव, तनाव मुक्त जीवन और जॉयफुल लाइफ कैसे हम लीड करें, इस पर आपके अनेक सेमिनार सेशंस दिल्ली में, बिहार में, यूपी में, पंजाब में, हिमाचल में और नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स में आपने ये कंडक्ट कराए हैं। आपको आपकी ईश्वरीय सेवाएं और समाज की सेवाओं को देखते हुए 2025 में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप राजयोग मेडिटेशन की विशेषज्ञा हैं और आज का जो हमारा ये विषय है कि पीस इन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, इस पर अपनी गहन अंतर्दृष्टि, अपना गहन प्रकाश डालेंगी और हम सबको कर्मयोगी जीवन में सच्ची शांति की अनुभूति कैसे हो, और शांति केवल बाहरी नहीं बल्कि शांति की सच्ची परिभाषा क्या है, उसकी भी गहराइयों तक हमें ले जाएंगी। हम आमंत्रित करते हैं एक बार पुनः करतल ध्वनि से आदरणीय बीके लक्ष्मी दीदी को।
ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे भ्रातर नर्मदेश्वर लाल जी एवं कुशल मंच संचालन करने वाले हमारे ब्रदर भास्कर भाई जी और सभा में उपस्थित आप सभी उस पिता परमात्मा की संतान, मेरे भाई एवं बहने, आप दो दिन से इस परिसर में हैं। और जब से आपने यहाँ पर पांव रखा होगा या जब आप अपने सेवा स्थानों पर गए होंगे तो वहां पर और यहाँ पर एक शब्द का कॉमन उच्चारण होता है, कौन सा? ओम शांति। अभी सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। कभी आपने सोचा इसका मतलब क्या है? ओम शांति, ओम शब्द में हिंदी वर्णमाला के तीन अक्षर हैं, आ उ और मा। आ मना आचरण में शांति, उ मना उच्चारण में शांति, और मा अर्थात हमारे मन में शांति। अब आप शांति का यहां मतलब क्या समझ रहे हैं? कि चुपचाप होकर के बैठ जाएं? अगर हम चुपचाप होकर के बैठ जाएंगे, थॉटलेस हो जाएंगे, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएंगे? सवाल उठते हैं। और अगर शांति है तो बोलेंगे कैसे? और कर्म में भी शांत होकर के बैठ जाएं तो एक्सीलेंसी कहां से आएगी? आ सकती है? नहीं। तो ये शांति कौन सी शांति हो जो हमारे विचारों में भी शांति हो, जो हमारे उच्चारण में भी शांति हो, और साथ ही साथ हमारे कर्म भी बहुत एक्सेलेंट हो और शांत पूर्वक हो? चाहते हैं आप सभी ऐसा ही हो, है? तो पीस इज नेचुरल स्टेट। आज आप सबने सुबह सेशन अटेंड किया होगा, किया? किस किस ने किया अटेंड? ऑलमोस्ट सभी ने किया। तो उसमें आत्मा का लेसन हुआ। और आत्मा की एक विशेषता, एक गुण कौन सा है? शांति। आप क्रोध में कितनी देर रह सकते हो और आप शांति में कितना समय रह सकते हो? तो पीस इज ए नेचुरल स्टेट डिफाइंड एज काम, स्टेबिलिटी एंड राइट थिंकिंग डिस्पाइट एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। कितनी भी परिस्थितियां हों, लेकिन उन सब के बीच में होते हुए भी हम अपने मन को शांति में रख करके कार्य करें। पीस को थोड़ा सा और डिफाइन किया है कि पीस के लिए क्या क्या चाहिए हमें। पी फॉर पावर और पेशेंस चाहिए, ई फॉर इमोशनल बैलेंस और इजीनेस चाहिए, ए फॉर अवेयरनेस, एक्यूरेसी चाहिए, सी फॉर काम, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, एंड ई फॉर इटर्नल वर्चू एनर्जी। तो ये थोड़ी पीस की डेफिनेशन ली गई है। अच्छा, हम पीसफुल रहेंगे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, हमें फायदा क्या होगा? क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप हो, चाहे वो प्राइवेट सेटअप हो, कुछ भी हो, परिस्थितियां तो हमारे सामने आती हैं और आएंगी ही या नहीं आएंगी? आप सब क्या कहते हैं? आती हैं परिस्थितियां, आती हैं चैलेंजेस, बहुत आती हैं। लेकिन इंक्रीज्ड फोकस एंड क्रिएटिविटी, शांतमय रहने से हमारा फोकस बढ़ता है और क्रिएटिविटी भी बढ़ती है. इट अलाउज द माइंड टू स्विच टू डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, फोस्टरिंग रिफ्लेक्शन एंड रिड्यूसिंग कॉग्निटिव लोड. कि हम अपने मन पर ज्यादा लोड नेगेटिव का, व्यर्थ थॉट्स का नहीं लेते हैं तो हमारा जो फोकस है अपने काम पे वो अच्छा होता है. एनहांस अथॉरिटी, हमारे अंदर अथॉरिटी भी बढ़ती है. कब? जब हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं, थोड़ा सा शांति का थोड़ा सा पॉज लेते हैं, तो हम जब कुछ बोलते हैं तो उस बोलने में भी एक ताकत आती है. आप समझते हैं ऐसा कि जब आप थोड़ा पॉज लेकर के, थोड़ा शांति में बैठ करके, भले हम 2 सेकंड की भी शांति क्यों ना हो, 15 सेकंड की भी वो शांति क्यों ना हो, लेकिन उससे हमारे वर्ड्स में ताकत आती है. इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, हमारा जो लोगों से कम्युनिकेशन होता है उसमें भी क्या समझते हैं, अच्छा होगा शांति में रहने से, या हम जल्दबाजी करें और आवेश में आ जाएं, इरिटेट हो जाएं, गुस्सा करने लगें, तो फिर एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है, टेंस हो जाता है और काम भी ठीक से हो नहीं पाता है. इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है. कि हम जब मीटिंग्स वगैरह में होते हैं और कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि कुछ हफड़ा तबड़ी होने लगती है, कुछ ऐसा सीरियस मैटर होता है तो हमारा मन अशांत होने लगता है कभी कभी, तो लेकिन हम जब शांति में बैठते हैं तो हमें अपने विचार रखने का बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है. दूसरी बात है इफेक्टिव लिसनिंग, कि जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मैनेजर होते हैं, प्रशासक होते हैं, उनको बहुत सारी बातें सुननी होती हैं और अगर हम उनकी बातें ठीक से सुनते नहीं हैं और जल्दबाजी में आ जाते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं तो फिर क्योस होने लगता है. तो इसीलिए इफेक्टिव लिसनिंग हमारे अंदर आती है. इमोशनल कंट्रोल होता है कि हम कोई भी बात आवेश में आकर के नहीं करते, आराम से सुनेंगे, आराम से करेंगे और हम चैलेंजिंग सिचुएशंस को भी बहुत प्यार से हैंडल कर लेंगे. नेक्स्ट है रीच सॉल्यूशन फास्टर, सॉरी रेजोल्यूशन फास्टर. द गोल ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रीच ए डिसीजन. ठीक है कि हमें अपनी बात को दूसरों के आगे रखना होता है, पेश करना होता है, उन्हें जानकारी देनी होती है और कुछ डिसीजन देने होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उन सब में सफल ही हों. नॉट टू विन, बीइंग साइलेंट एट टाइम्स नॉट ओनली रिड्यूसेस द नॉइज बट आल्सो स्पीड्स अप रेजोल्यूशन. कि जब हम साइलेंट में बैठ करके और जब अपने अंदर की नॉइज को शांत करते हैं, बाहर से हम शांत रहते हैं तो हम रेजोल्यूशन में ठीक से पहुंचते हैं. अब हमारा जो टॉपिक है पीस इन थॉट्स, हमारे मन में कैसे शांति हो और शांति होने से क्या क्या होगा. पीसफुल थॉट्स विद राइट एनर्जी लीड्स टू सक्सेसफुल आउटकम्स. वर्क आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा. एनहांस डिसीजन मेकिंग. हमारे यहाँ पर एक जज साहब आते थे और वो सेशन जज थे, और वो कहते थे कि कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, ऐसे केसेस आ जाते हैं, तो मैं सारा केस स्टडी करने के बाद ना 2 मिनट के लिए शांति में बैठ जाता था. लोगों को लगता था मैं शांति में बैठा हूं, लेकिन वो बाबा के बच्चे थे तो वो सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट हो जाते थे. और फिर उसके बाद वो जो डिसीजन देते थे तो लोग भी हैरान होते थे कि आपने इतना एक्यूरेट डिसीजन कैसे दे दिया. तो इसीलिए जितना हम अपने मन को शांत रखते हैं तो उतना हमारे अंदर डिसीजन पावर बढ़ती है. और सेल्फ सावर्निटी, अपने मन और कर्म इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल रहता है. पावर टू डिस्क्रिमिनेट, अर्थात हमारे अंदर निर्णय शक्ति बढ़ती है, परखने की शक्ति बढ़ती है, और हमारे संबंध, हार्मनी इन रिलेशंस, हमारे आपसी संबंध. क्योंकि अगर आप ऑफिस में एक बारी गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो आपकी सदा के लिए इमेज क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? अरे साहब तो ऐसे ही हैं, इनके पास जब भी जाओ पता नहीं किस मूड में बैठे होते हैं. तो हमारे संबंध अच्छे होंगे या खराब होंगे? हाँ. और कई बार ऐसा भी होता है कि हम रिटायर हो जाते हैं या हमारी पोस्टिंग किसी दूसरे स्थान पर हो जाती है, तो भी हमारा पुराना स्टाफ हमें इतना प्यार करता है, इतना रिगार्ड देता है, और जब कभी आप अचानक ऑफिस में जाते हैं तो भी बहुत रिगार्ड मिलता है. होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ सदा संबंध कैसे रखे? हार्मोनियस रखे. हमारे तो दादी जी कहती थी, हार्मोनियस रिलेशनशिप रखने में क्या हर्जा है, हार मान लो, हार्मनी हो जाएगी. क्योंकि ईगो ही तो प्रॉब्लम है कि मैं बड़ा ऑफिसर हूं, ये छोटा है. और कभी कभी हम छोटों को साथ लेकर, मैं एक बार की बात सुनाती हूं कि एक कंपनी थी, उसमें एक सीनियर ऑफिसर थे, और वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको भी रोज सलाम करके जाते थे और वापस जाते हुए भी सलाम करते थे. और एक दिन उस फैक्ट्री में कुछ फॉल्ट हो गया और उनको उस जगह जाना पड़ा, और वो अंदर गए और इतने में अभी ठीक कर ही रहे थे सारे सिस्टम को अंदर से थोड़ा, तो इतने में ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया. और ऑफिस बंद हो गया और वो जो रूम था वो भी जो उसका केयर टेकर था वो बंद करके चला गया, क्योंकि उसको पता नहीं चला कि अंदर कोई ऑफिसर भी है. और वो बिल्कुल आइस कोल्ड ऑफिस, मतलब उसका जो सेक्शन था जिसमें वो गए थे, आइस कोल्ड, जिसमें थोड़ी देर के लिए तो आप काम कर सकते हैं लेकिन लंबे समय में तो आप ही फ्रीज हो जाएंगे. तो क्या हुआ, जिसे 6 बजे या 7 बजे ऑफिस ऑफ होता था तो वहां पर सब लोग चले गए. वो सिक्योरिटी वाले ने कहा, आज वो साहब नहीं आए, आज वो साहब नहीं आए, नहीं तो वो तो रोज मुझे सलाम करके जाते थे. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी कि मुझे बिना सलाम के चले जाए, वो हाय हेलो करके जाते थे. और कहते हैं अंदर में चक्कर तो लगा के आऊं, तो पता चला वो साहब अंदर गए थे, तो उसने दरवाजा खोला और सचमुच में उस साहब ने कितना थैंक्स किया होगा कि अगर आज तुम ना आते तो आज ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी हमारी बातें, हमारी नम्रता पूर्वक व्यवहार, हमारे अच्छे संबंध हमारे जीवन को भी कभी कभी बचा सकते हैं। हमारे विचारों में शांति, कहते हैं शांत मन ही शक्तिशाली मन है, क्योंकि हमारी आत्मा का भोजन क्या है, हमारी आत्मा का भोजन क्या है, थॉट्स ना? और हम देखें तो सारा दिन हमारा मन चलता रहता है। इसलिए किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि हमारा माइंड 30,000 to 50,000 थॉट्स पर डे क्रिएट करते हैं। हमारा मन कितनी क्रिएटिविटी है, आपने कभी सोचा हमारा मन इतना चलता है, 30,000 to 50,000 थॉट्स। कभी कभी मैं स्कूल में प्रोग्राम लेती हूं तो मैं बच्चों को कहती हूं कॉपी पेन निकालो, मैं आपको एक मिनट का समय देती हूं और उस एक मिनट में आपको आपके घर में जो जो सामान है वो लिखो। तो वो सोचते हैं पता नहीं कंपटीशन है कोई, और फटाफट लिखते हैं और 10 से लेकर के 35 तक वो लिख डालते हैं। अब हम उन बच्चों को कहते हैं हमने आपको एक मिनट में दो काम करवाए हैं। कौन से दो काम? एक लिखने का और दूसरा सोचने का, एक लिखने का और दूसरा सोचने का। और अगर आपको लिखने का काम ना दिया जाए और केवल सोचने का ही काम हो तो इसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। और जब हम तनाव में होते हैं तो आप अनुभवी होंगे कि आपका मन कितना चलता है, इतना अधिक चलता है कि रात को नींद भी नहीं आती है। सुबह पहुंचते हैं डॉक्टर साहब के पास और क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब आज मेरा सिर बहुत भारी है, मुझे बेचैनी हो रही है। डॉक्टर साहब पूछते हैं क्यों, रात को नींद नहीं आई है। क्यों नींद नहीं आई है? थोड़ा सा टकराव हो गया, थोड़ा सा किसी से बात हो गई, या मन के विचार बहुत चल रहे। तो क्या होता है, हेल्थ पे असर आता है। अब उस डॉक्टर को ये मालूम नहीं है कि इनका मैं ये कैसे ठीक करूं, वो सिर्फ एक मेडिसिन देंगे, कॉम्पोज देंगे, ट्रैंकुलाइजर देंगे, टैबलेट देंगे या इंजेक्शन देंगे, लेकिन फिर जब पेशेंट थोड़ी देर बाद उसे उठता है फिर वही मन चल रहा है। तो वहां मन को कंट्रोल करने की पावर नहीं है डॉक्टर के पास, वो किसके पास है, वो कहां पर है, यहां पर है, स्पिरिचुअलिटी में है। तो इसीलिए जब हम मन को एक काम देते हैं, मैंने आपको कहा अगर हम 10 भी थॉट नहीं लेते, 35 भी नहीं लेते, ऑन एंड एवरेज 15 थॉट्स ले लेते हैं ऑन एंड एवरेज, तो एक मिनट में कितने हो गए 30, और एक घंटे में कितने हो गए बोलो कैलकुलेट करो, 1800 और आपके पास 24 घंटे हैं, चलो आप कुछ समय रेस्ट करते हैं, फिर भी तो आपका मन कितना काम करता है। इसीलिए कहा 30,000 to 50,000 थॉट्स पर डे, और उसमें भी कुछ थॉट्स आपको आज सेशन में बताया गया होगा, कुछ विचार पॉजिटिव होते हैं, कुछ विचार नेगेटिव होते हैं, कुछ विचार आवश्यक होते हैं और कुछ विचार तो वेस्ट होते हैं। और जब हमारे मन में वेस्ट और नेगेटिव की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है तो तनाव भी बढ़ता है और हमारी वर्किंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, और भी बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स बहुत होते हैं। तो इसीलिए अगर हमारे विचारों में शांति है तो आपका मन कैसा होगा, शक्तिशाली मन होगा। हा? अब आता है पीस इन वर्ड्स, मन शांत तो हमारे बोलने की भाषा कैसी होगी। हमें यहां पर परमात्मा पिता सिखाते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच के बोलो। क्या जो हम बोलने जा रहे हैं, जिसको बोलने जा रहे हैं, क्या उसकी जीवन में इस बोलने की इम्पोर्टेंस है? अगर नहीं है तो क्यों बोले? क्या उसको जरूरी है? क्या उसको कुछ लाभ होगा? अगर नहीं होगा तो हम क्यों बोले? कभी कभी हम अपने मन की भड़ास निकालने के लिए या अपने मन को हल्का करने के लिए भी बहुत बारी फालतू की गॉसिप्स, और फालतू की बातों को क्या कहा जाता है, बंद कर अपनी राम कहानी को। और जो थोड़ा बोलते हैं दूसरे बहुत ध्यान से सुनते हैं, नहीं तो क्या कहते हैं, ये बात का बतंगड़ बहुत बनाते हैं, ये इनकी राम कहानी बंद ही नहीं होती है। और कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, महत्वपूर्ण बोलेंगे तो वो बोल आपके क्या बन जाएंगे, वरदान बन जाएंगे, वो बोल आपके महावाक्य बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो समझो कि क्या ये जरूरी है बोलना, अगर नहीं है तो उसे इग्नोर कर दिया जाए। और कभी कभी हम बोल बैठते हैं और फिर हम बाद में कहते हैं सॉरी सॉरी मेरा ये भाव नहीं था, होता है ऐसा, मेरा ये भाव नहीं था। और वैसे तो हमारे एक एक शब्द का वाइब्रेशन चला जाता है, एक एक शब्द तो क्या थॉट का भी वाइब्रेशन चला जाता है। जैसे एक मैं तो कहती हूँ कि एक पॉन्ड है, एक तालाब है, और उसमें आपने एक कंकड़ डाला एक कंकड़ डाला और उसकी रिपल्स जो हैं पूरे तालाब में फैल जाती हैं, फैलती हैं, उसकी लहरें पूरे तालाब में फैल जा। इसी तरह से हम किसी भी स्थान पर कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो उससे हमारा सारा एटमॉस्फेयर बन जाता है, वातावरण बन जाता है। तो इसीलिए जुबान को तो हड्डी नहीं मिली है, क्या कहते हैं, कुदरत को ना मंजूर थी हड्डी जुबान की, फितरत को ना मंजूर थी हड्डी जुबान की, पर ये जुबान अनेकों की हड्डियां तुड़वा भी सकती है। तो इसीलिए हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसा बोलना है, किसके सामने बोलना है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। फिर हम कहते हैं बोलो, कैसा बोल बोलो हा? वैसे तो एक कहावत है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। तो हम कहते हैं बो लो, जो बोगे वही काटोगे। इसलिए कहते हैं बोया था बबूल आम काय को खाए, बबूल का कांटा बोया आपने। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तब हमें पता नहीं चलता, तब हम बड़े मजे लेते हैं। देखा मजा आया ना, देखा उसको अभी ऐसा कर। और लेकिन वो कर्म का खाता जब हमारे पास आता है, हम फिर कहते हमने ऐसा क्या किया था, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे सामने ऐसा क्यों।
लौकिक में भी अगर कोई सास बहू है या कोई ऐसे संबंध में है, कहते मैंने इतना खराब किया था क्या जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। भाई बिना किए तो नहीं हो रहा है, हर कर्म बीज है और हर बीज का फल निकलना ही निकलना है। इसीलिए जब हम कर्म करते हमें इतनी अवेयरनेस नहीं रहती है, तब कभी कभी इन कर्मों में हम बड़े मजे भी ले लेते हैं। ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत वैर वैमनस्य, इनसे लिप्त होकर के हम कर्म कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास जब वो कर्म का रिटर्न आता है तो हम दुखी होते हैं और कई गुणा होकर के आएगा। ये भी एक स्पिरिचुअल लॉ है। तो इसीलिए ऐसा बोलो, माना वाणी ऐसी बोलो जो बो और फिर वैसा ही लो। ये मैंने बताया जितना हम कम बोलते हैं उतना लोग हमें अच्छी तरह से सुनते हैं, इंतजार करते हैं कि कब बोलेंगे। तो हमारे वर्ड्स में भी शांति आती है तो हमारे वाणी पावरफुल हो जाती है। नेक्स्ट है पीस इन एक्शन, कि जब हमारे कर्मों में शांति आती है, आचरण में शांति आती है, हमारे व्यवहार में शांति आती है, तो हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक छोटी सी स्टोरी या रियल घटना कहो कि एक बारी एक व्यक्ति खेतों में काम कर रहा था और उसने कहीं घड़ी उतार करके रख दी, रिस्ट वॉच थी और उसने उतार करके रख दी और भूल गया कहाँ रखी कहाँ रखी। बहुत ढूंढा क्योंकि वो वॉच जो थी ना वो उसके बड़े भाई ने उसको दी थी उसके बर्थडे पर, और वो बहुत कॉस्टली वॉच थी। तो वो उसको याद कर रहा था, अरे मेरे भाई ने इतनी महंगी घड़ी दी थी मुझे और आज मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही है। तो बहुत निराश सा होने लगता है, बहुत डिप्रेस हो जाता है। लेकिन वहां ना थोड़ी दूरी पे 4-5 बच्चे कुछ खेल रहे थे, शाम का समय था। तो उन बच्चों को पूछता है कि आप ढूंढो जरा मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ रख दिए, क्या है, नहीं मिल रही है। तो बच्चे ढूंढने लगते हैं, सारा जो एक कमरा बना हुआ था खेतों के बीच में उसमें सारा ढूंढ करके इधर उधर सामान सब फैला। थोड़ी देर के बाद एक बच्चा कहता है आप सब बच्चे बाहर चले जाओ, आप सब बच्चे इस कमरे से बाहर दूर चले जाओ, फिर मैं ढूंढूंगा। फिर वो साइलेंस में ढूंढना शुरू करता है। तो साइलेंस में क्या होता है, वो घड़ी की आवाज आनी शुरू होती है, टिक 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 हा? और वो वहीं धीरे धीरे जाता है और वहां ही
कहीं छिपी पड़ी होती है घड़ी। तो कहने का भाव क्या है, जितना हम पीसफुल माइंड में होते हैं उतना ही हमारा एक्शन क्या होता है, अच्छा होता है और हमारी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ जाती, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे किसी भी फील्ड में है हम। तो जितना शांति में रह करके काम करेंगे, इवन मैं आपको कहूं आप शांति में रह करके काम करते हैं तो आपकी आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ता है, पता है? हाँ, जितना हम उत्तेजना में आते हैं, गुस्से में आते हैं, उतना हम अपने लाइफ स्पैन को छोटा करते हैं। इसलिए कहते हैं योगी की लाइफ लंबी होती है और भोगी की लाइफ छोटी होती है। हाँ? फिर है दूसरा गुड रिलेशंस, वो मैंने आपको बताया ये कि जब हम अच्छे व्यवहार में आते हैं, कर्म में आते हैं, तो हमारे रिलेशंस सदा सदा के लिए अच्छे हो जाते हैं। फिर हमारा हाई सक्सेस रेट, जो भी हम कर्म करते हैं इसमें बताया है कि हमारा विजन, गोल, प्लान, एक्शन और फिर सक्सेस ज्यादा होती है। नो चांस ऑफ रिग्रेट, हमें कभी भी पश्चाताप नहीं करना पड़ता है। अगर हम शांति में आराम से सोच समझ के काम करते हैं तो हमें कभी भी पश्चाताप नहीं करना पड़ता। परफेक्ट बैलेंस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, चाहे आप कहां पर भी हैं, किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी पोस्ट पोजीशन में हैं, तो वहां पर आप हमेशा परफेक्ट बैलेंस बना लेते हैं। प्रॉब्लम कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ पीस, डिस्क्रिपेंसी इन थॉट्स, वर्ड एंड एक्शन लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स। अगर आपका मन ही शांत नहीं है और मन, वचन और कर्म में सामंजस्य नहीं है तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। हम बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो हमारे माइंड की स्टेट कैसी हो जाती है, द्वंद वाली, अंतर द्वंद चलता रहता है, क्योटिक स्टेट। और हम ठीक टाइम पे ठीक डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। इवन आप देखिए, छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूं कि मान लो एक हस्बैंड वाइफ हैं और उनके आपस में कुछ तू-तू मैं-मैं हो गई और हस्बैंड भी गुस्से में है और वाइफ भी गुस्से में। इतने में घर में 3-4 साल का बच्चा कुछ पूछने के लिए आता है, कुछ पूछने के लिए, उसको नहीं पता कुछ भी, लेकिन वो पूछने के लिए आता है। तो आप क्या कहते हैं, अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि माइंड में अंतर द्वंद चल रहा है। जब इतनी छोटी सी बात में हम डिसीजन नहीं, तो हम एक एग्जीक्यूटिव होकर के, एक मैनेजर होकर के, एक जिम्मेवारी की पोस्ट पर बैठ करके क्या हम ठीक डिसीजन ले पाएंगे अगर मन में शांति नहीं है? कोई ऑफिस की प्रॉब्लम घर में, घर की प्रॉब्लम ऑफिस में लेकर के ही बैठे हुए हैं, तो कैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी सेवाएं दे पाएंगे? तो हमारे डिसीजंस पुअर हो जाएंगे। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पर भी कंट्रोल नहीं रहता है। हम बोलना नहीं चाहते थे, निकल गया, देखना नहीं चाहते, हो गया, देख लिया, सुनना नहीं चाहते, सुन लिया, और सबसे बड़ी बात, गुस्सा करना नहीं चाहते पर हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात कि हम सोचना नहीं चाहते पर सोच बंद हो ही नहीं रही है, तभी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि आपका पोज नेचुरल काम नहीं हो पा रहा है, तो आपको जाना पड़ता है हेल्प लेने के लिए। तो इसीलिए आपका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता है, और कभी कभी तो इतने ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि वायलेंट रूप भी हो जाता है।
फिर हमारी हमारा उसका सब का इफेक्ट जो है हमारी एफिशिएंसी पर पड़ता है, पुअर वर्क एफिशिएंसी। अब यहां हम आते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ राजयोगा मेडिटेशन। ये राजयोग मेडिटेशन हमारे मन वचन कर्म पर क्या इफेक्ट डालता है? तो जो हमारा मन वचन कर्म में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, डिस्क्रिपेंसी है, तो उसमें सेल्फ कंट्रोल होने लगता है। डिस्क्रिपेंसी बिटवीन थॉट्स वर्ड एंड एक्शन हैपन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, उसी के कारण ही होता है। और जब हम सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जो आज आपका पहला लेसन हुआ है, कल आपका दूसरा लेसन होगा अबाउट द सुप्रीम सोल, और फिर आपको मेडिटेशन परसों सिखाया जाएगा। तो वैसे तो इसके बाद भी सेशन होते हैं, हमारे 7 डेज का कोर्स होता है पूरा, तो तभी आपके जीवन में परिवर्तन आता है। तो परंतु फिर भी आपको यहाँ 3 दिन का सेशन दिया जा रहा है, आज आपको सोल का मिला, कल आपको सुप्रीम सोल का, और परसों आपको मेडिटेशन के बारे में पूरा बताया जाएगा। तो उससे आपका अपने ऊपर कंट्रोल होता है। हाँ? क्यों होता है? क्योंकि आप सेल्फ रियलाइजेशन में आते हो कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या करने के लिए आई हूँ। ये पोस्ट पोजिशन तो हमारा एक रोल है, एक्चुअल आई एम ए सोल बट दिस इज माई रोल। घर में भी अलग अलग रोल है ना, ऐसे ऑफिस में भी अलग अलग रोल है, कोई पीएन के रोल में है, कोई सबऑर्डिनेट के रोल में है, कोई सीनियर के रोल में है, कोई जूनियर के रोल में है, तो वो हमारे रोल हैं। लेकिन एक्चुअल हम क्या हैं? जब हम सेल्फ को रियलाइज करते हैं तो हमारा सेल्फ कंट्रोल होता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कंट्रोल, तो हमारा क्या होता है? लेस डिस्क्रिपेंसी बिटवीन थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शन, तब हमारा सामंजस्य स्थापित होता है और ये क्योटिक माइंड जो होता है वो शांत होने लगता है। तो अब ये है कि राजयोग मेडिटेशन क्या है। यूं तो आपको आज थोड़ा बताया भी है, पहले वाले सेशन में भी बताया गया है। तो आप अपने आप के राजा बनते हो। राजयोग माना अपनी इन कर्म इंद्रियों के हम राजा बनते हैं। जो हम सोचना चाहें वही हम सोचेंगे, जो हम करना चाहें वही हम करेंगे, जो हम देखना चाहें वही हम देखेंगे, जो हम सुनना चाहें वही हम सुनेंगे, जो हम बोलना चाहें वही हम बोलेंगे। हमारा पूरा कंट्रोल होता है अपनी इन इंद्रियों के ऊपर। इसीलिए इसका नाम राजयोग है। आई यूज माई थॉट्स एंड सेंसेस इन द राइट वे, तो हम अपने विचारों को, अपनी इंद्रियों को राइट वे में यूज करते हैं, सो दैट दे विल सर्व मी वेल एंड टेक मी वेयर एवर चूज। बताया, टू हैव कॉन्शियस यूनियन। अब ये क्या है? मेडिटेशन माना आत्मा का परमात्मा उस सुप्रीम एनर्जी के साथ जुड़ना। योग, योग माना जोड़, योग माना संबंध, योग माना कनेक्शन, योग माना लिंक। जब हमारा आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है तो उनकी पावर्स हमारे पास आने लगती है। जैसे अब ये माइक चल रहा है, इस माइक के द्वारा आप सभी सुन रहे हैं, और इसके पीछे से पावर कट ऑफ हो जाए तो इंस्ट्रूमेंट थोड़ी काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? पीछे की एनर्जी ना, बिजली की एनर्जी काम कर रही है ना। तो इसी तरह से हमारा भी जब संबंध उस परमात्मा पिता से, जिसके लिए कहा तवमेव माता पिता तवमेव तवमेव बंधु च सखा तवमेव तवमेव विद्या द्रवणी, तो उससे मेरे सारे संबंध हैं। रोज आरती में भी हमने गाया, क्या गाया? मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ू मैं किसकी, यही गाया। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ू मैं किसकी। तो जब हमारा उस मात पिता से, कौन से मात पिता, एक शरीर के मात पिता और दूसरे हैं हमारे आत्मा के मात पिता, तो उस पिता का परिचय जो आपको कल मिलने वाला है कि वो कौन है, वो कहाँ रहता है, उससे हमारा संबंध क्या है। गा तो आए थे, जन्म जन्मांतर हमने गाया है, लेकिन यहाँ आपका संबंध एक्चुअल में जुड़वाया जाएगा और उस जुड़ने से फिर हमारे अंदर जो आंतरिक शक्तियां आती हैं और हमारा इन इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, तभी हम कर्म योगी बन सकते हैं। तभी हम कर्म में योग शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा आर्ट है जिसको आप एक बार ही सीख लेते, जैसे ड्राइविंग है। ड्राइविंग एक आपने सीख ली एक बारी लाइफ में, जब हम शुरू शुरू में सीखते हैं तो कितने स्टिफ होकर के बैठते हैं, कोई बोले तो कहते चुप करो, मेरे को ड्राइविंग करने दो, चुप करो, ये नहीं बोलो, ये नहीं करो, ये नहीं। और जब आप सीख जाते हैं, जब आप सीख जाते हैं, उसी गाड़ी में आप बातें भी करते हैं, उसी गाड़ी में आप म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं, उसी गाड़ी में ही आप कुछ खा पी भी लेते हैं, और आजकल तो मोबाइल भी चला लेते हैं साथ साथ, क्योंकि आपने सीख लिया ना। इसी तरह से जब इस राजयोग मेडिटेशन को, इस योग को आप सीख जाते हैं, तो फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जहां पर भी हैं, तो आप ये कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन बाद में तो आप यहां पर भी इस कॉम्प्लेक्स में भी देख रहे होंगे, सफाई भी हो रही है, खाना भी बन रहा है, कपड़े भी धुलाई होते होंगे, गाड़ी चलाने वाले गाड़ी भी चला रहे, लेकिन सब राजयोगी हैं, माइक वाले, साउंड वाले, सब राजयोगी हैं। तो इसीलिए हमारे काम में परफेक्शन आती है इस मेडिटेशन को सीखने से। इसीलिए कर्म हमको करना है, जो भी ड्यूटीज हमें मिली हुई हैं, जो हमारी लायबिलिटीज हैं, चाहे घर में है चाहे ऑफिस में है, लेकिन उन सब ड्यूटीज को भी निभाना है और साथ साथ ये राजयोग मेडिटेशन अर्थात मन से हम परमात्मा के साथ जुड़े भी रहते हैं, तो आपका काम परफेक्ट होता है। और एक बात और उसमें, कि जो हमारे को कोई हर्ट कर जाता है, कोई नेगेटिविटी दे जाता है, हमारा मन दुखी हो जाता है, पेनफुल सिचुएशन में आ जाता है, ऐसे लगता है किसी ने घाव कर दिया है, तो इस मेडिटेशन से हमारे घाव भी हीलअप हो जाते हैं, हमारा दुख दर्द समाप्त हो जाता है और हम एक खुशनुमा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स और वेस्ट थॉट्स। हम सब चाहते हैं हम पॉजिटिव रहें, लेकिन चारों तरफ का वातावरण कैसा है, फटाफट नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। आते हैं आप सबको, आते हैं या नहीं आते, आते हैं। मान लो आपने बहुत समय से सुना हुआ है, रोज अखबार पढ़ते हैं, रोज न्यूज देखते हैं, अरे वहां ये होता है, ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका ऐसा, तो हम वो नेगेटिव थॉट्स लेते लेते हमारा माइंडसेट भी कैसा हो जाता है, वैसा ही हो जाता है। मान लो आपका बच्चा यंग है, टीनेजर्स में है, 13, 14, 15, 16 साल का है, और वो मोटरसाइकिल कहता है मैं लेके जाऊंगा, हालांकि चलाना अलाउड नहीं है, फिर भी लेके जाता है। मान लो वो 18 साल का है, चलो 18 का है, और वो लेकर के जाता है और आपको कह करके जाता है कि मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा, मैं जा रहा हूं अपने फ्रेंड के पास या कहीं पे भी, मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा, और 2 घंटे के बाद आपका मन कैसे होने लगता है, अभी तक आया नहीं, 2:30 बज गए, मैंने 2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 3:30-4 घंटे के बाद कैसे थॉट्स चलने लगते हैं,
बहुत ज्यादा नेगेटिव, पता नहीं वो इतनी तेज चलाता है, पता नहीं कहीं मार ना दिया होगा, इनकी कुछ लगाना लिया हो, पता नहीं। और वहां से कोई फोन भी नहीं आ रहा और आप भी फोन कर रहे हो, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसकी बैटरी डाउन है फोन की भी, तो आपके मन में कैसे विचार चलते हैं, कैसे विचार चल रहे होते हैं? अति नेगेटिव, अति नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव और वेस्ट। और अगले 15 मिनट के बाद वो ठीक ठाक मोटरसाइकिल चलाता हुआ वापस आ जाता है, तो आपके कौन से थॉट्स थे? वेस्ट और नेगेटिव की प्रोडक्टिविटी थी ना। और इसी से ही हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हमारे अंदर बीमारियां भी पनपती हैं। इसीलिए मेडिकल साइंस क्या कहती है, 80-90% डिजीजेस आर दी साइकोसोमेटिक डिजीजेस, जिसका हमारे मन से बड़ा गहरा कनेक्शन है। इसीलिए आपके घर में अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो, बीपी की प्रॉब्लम हो, तो भी उनके लिए क्या कहते हैं, इनको कोई भी बात जल्दी से मत बता देना, कहते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि यहां से बात सुनी नहीं कि इनके जो पैरामीटर्स हैं वो शूट अप करने लगते हैं। तो इसीलिए ये विचार, तो कैसे विचार रखने, आपको कैसे विचार रखने चाहिए? पॉजिटिव, हम चाहते तो हैं पॉजिटिव हा? लेकिन अगर मैं आपको कहूं आपको यहां 15 मिनट बैठना है या आधा घंटा बैठना है, कोई क्लास नहीं होएगी, आपके मन में कैसे कैसे विचार चलते हैं हा? और वेस्ट थॉट्स, ज्यादातर हम पुरानी बातों को सोचते हैं, पराई बातों को सोचते हैं, दुख भरी बातों को सोचते हैं, तो वेस्ट और नेगेटिव की क्वांटिटी बढ़ जाती है और हेल्थ हैजार्ड्स भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव थॉट्स के लिए हमारे यहाँ पर एक कैलेंडर है, चाहे तो आप ले जा सकते हैं, थॉट फॉर टुडे, मैं समझती हूँ 100 रुपीज का आता होगा वो, 365 डेज का पर डे का कैलेंडर है। तो अगर आप उसमें सुबह सुबह एक पॉजिटिव थॉट ले लेंगे तो सारे दिन में आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। इसीलिए क्या कहते हैं, कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो कहते हैं सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी, मैंने इसकी शक्ल देखी थी, मेरा सारा दिन ही खराब हो गया है। और अगर आप अच्छे विचार सुबह सुबह ले लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सुबह सुबह ईश्वरीय महावाक्य सुनाए जाते हैं जिसको हम मुरली कहते हैं, और वो हम सुबह सुबह सुन लेते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हम ले लेते हैं, तो सारा दिन हमारा पॉजिटिव रहता है। विभिन्न चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, विघ्न आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन उनके बीच में आप सदा स्टेबल रहेंगे, आप सदा स्टेबल रहेंगे, स्टेबिलिटी के साथ रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक अच्छा विचार, एक पावरफुल थॉट, पॉजिटिव थॉट रोज सुबह सुबह ले लेना है, और उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, कैसे लेंगे आप, एक एक थॉट आप लेते हैं, आप अपना ये राइट हैंड अपने सिर पर रखिए और ये थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि ये हाथ भगवान का हाथ है हा? और आप सोचते हैं ये भगवान का वरदान भरा हाथ मेरे सर पर है, बोल भी सकते हैं, ये भगवान का वरदान भरा हाथ मेरे सर पर है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बोलिए, मेरे हर कर्म में विजय हुई ही पड़ी है, मेरे हर कर्म में विजयी हुई ही पड़ी है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि परमात्मा का वरदानी हाथ सदा मेरे सर पर है। आपने ये थॉट सुबह सुबह लिया, अब आप किसी भी सिचुएशन में काम करते हैं तो आपके मन में क्या रहता है? जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप एक भी पॉजिटिव थॉट रोज सुबह ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मन कितना शांत होता है, आपकी वाणी कितनी पावरफुल होती है, मधुर होती है, और आपके कर्म कितने अच्छे होते हैं। हा? तो हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ शायद आप लोगों के लिए नहीं बजा, हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ट्रैफिक कंट्रोल चलता है, मन का ट्रैफिक कंट्रोल। मन में भिन्न भिन्न विचार आते हैं तो उसमें हम थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं और अपने मन को फिर नई दिशा दे करके फिर हम कार्य करते हैं। तो हमारा ये हर दो घंटे के बाद भी चलता है और एक 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 घंटे के बाद भी चलता है। तो ये आप अगर अपने घड़ी में अलार्म लगा के, मोबाइल में अलार्म लगा करके भी आप ये कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके विचार कहाँ जा रहे हैं। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, तो गाड़ी चलते चलते रुकती है रेड लाइट पे और हम रिलैक्स होते हैं और फिर हम अपनी दिशा लेते हैं। तो इसी तरह से मन के संकल्पों का भी हम यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल करके और अपने को नई दिशा, नए विचार कैसे चलाने हैं। जस्ट ए मोमेंट, जस्ट ए मिनट, थोड़ी देर के लिए रुकें और फिर उसके बाद, और अगर हम कहें तो सुबह सुबह उठते ही, आजकल तो मेडिकल साइंस भी कहती है कि सुबह उठते ही आप बेड से पांव नीचे नहीं रखें। क्या करें? दो तीन मिनट, पांच मिनट, या आप दस मिनट बैठ सकते हैं, तो दो तीन मिनट एटलीस्ट आप कुछ पॉजिटिव थॉट्स ले लें उसी समय उठते ही, क्योंकि उस समय आप जब नींद से उठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेट होता है और सबकॉन्शियस माइंड में 90% पावर होती है, एज यू नो। तो उस समय अगर आप पॉजिटिव थॉट लेते हैं तो बहुत पावरफुल बनते हैं, तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी और आपका माइंड भी बहुत अच्छा और कर्म भी बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरी बात, रात को सोते हुए सोने से पहले, है ना, सोने से पहले आप दो मिनट या तीन मिनट, पांच मिनट, जो दिन भर के दिनचर्या अपने पिता परमात्मा को दे दें। पिता हमारा है ना परमात्मा, उसको हम शिव बाबा कहते हैं, तो उनको दे दें और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के परमात्मा की गोद में सोएंगे तो आपको कभी स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी पड़ेंगी, नींद की गोली नहीं लेनी पड़ेगी। आप बहुत आराम से परमात्मा पिता की याद में और उनको सारा हालचाल दे करके सोएंगे तो बहुत रिलैक्स अगले दिन उठेंगे और बहुत फ्रेश होंगे। तो इसीलिए, और वैसे तो हम कहते हैं एक एटीएम ले लो यहां से। कौन सा एटीएम? एनी टाइम मेडिटेशन। हाँ, चाहेंगे सभी कि हम ये एटीएम ले, फ्री में मिल रहा है, लेके जाएंगे। जब आपको दिल करे, आपका पिता है, आप अपने पिता को कभी भी याद कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? जरूरी थोड़ी है कि कोई गीत बजे तभी आप कर सकते हैं या कोई कहे तभी आप कर सकते हैं। एटीएम लेकर के जाना, ठीक है? इसमें सम मिथ रिलेटेड टू मेडिटेशन, मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम मन के विचारों को बिल्कुल खत्म कर दें, स्टॉप कर दें। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि मन का तो काम ही है विचार करना, कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही। तो हम मन का दमन नहीं कर सकते और मन को दमन करना भी नहीं है, हमने मन को सप्रेस नहीं करना है, बल्कि हमने परमात्मा को याद करना है और उनसे सुख शांति आनंद खुशी हाँ जो हमको चाहिए जीवन में, जीवन में तो यही चाहिए ना, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, तो वो हम परमात्मा से लेवें, ना कि मन का दमन करें। हम कहते हैं मन का दमन नहीं, या मन को सुमन बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। फिर है नेक्स्ट प्रार्थना। लोग कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो प्रार्थना प्रेयर वन साइड कम्युनिकेशन है और मेडिटेशन इज टू वे कम्युनिकेशन, कि हम भी परमात्मा से अपने पिता से बात करते हैं और परमात्मा पिता भी हमसे बात करते हैं। बस उसको जितना साइलेंस में रह करके उसको कैच करना होता है, जितना साइलेंस में रहेंगे उतना आप कैच अच्छा कर पाएंगे। फिर एक है, लोग कहते हैं कि चैंटिंग करेंगे, हम मंत्र ले लेते हैं हाँ और चैंटिंग करेंगे। कुछ समय तक तो ये मंत्र काम करता है जो प्रैक्टिकल है, जैसे किसी ने ले लिया ओम नमः शिवाय या किसी ने और कोई ले लिया, वो कुछ समय तक काम करता है, आपका मन उसमें लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद मन कहता है मुख को तू चैंटिंग करता रहे और मैं तो चला। ये होठ यहां हिल रहे हैं, आवाज भी आ रही है, लेकिन मन एकाग्र नहीं है, क्योंकि मन को हमारे हमेशा कुछ ना कुछ नयापन चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी चाहिए। तो अगर उसको नहीं मिलती है तो वो मुख को कहता है तुम करते रहो चैंटिंग और मैं तो चला। तो लेकिन ये हमें नहीं करना है, ये राजयोग का प्रॉपर मेथड जो आपको सिखाया जाएगा वो आप सीख करके अच्छी तरह से जाएं, उसमें डिले भी ना करें और अच्छी तरह से सीख करके जाएं, और जहां पर भी आप जाएंगे वहां इसको कंटिन्यू करेंगे तब भी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, तो आप सबने बहुत अच्छे से सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, और कोई प्रश्न होगा तो आप जरूर पूछिएगा। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार दिल से जोर से आदरणीय दीदी जी के लिए ताली बजाएंगे। जैसा कि विषय है वो आदरणीय दीदी जी के वाणी में और आपके जीवन में वो झलक रहा था, और ना केवल हम सुन रहे थे बल्कि हमें क्या हो रहा था, वो अनुभव हो रहा था। और आपने जो हम सबको आज मंत्र दिया है वो हम सभी आज हमेशा के लिए ना केवल लेकर जाएंगे बल्कि हम उसको यहीं धारण करके, कई बार क्या होता है नोटबुक्स में ही रह जाता है, हम यहां धारण कर लें तो हमेशा हमारे कर्मों में, जैसा कि आपने कहा कि शांति में रहने से हमें अपने विचार को रखने का स्पेस मिल जाता है, हमारी इफेक्टिव लिसनिंग बढ़ जाती है, और केवल शांत बाहर से नहीं बल्कि हमारे शांति जो अंदर में है उसके साथ साथ हमारे जो माइंड के थॉट्स हो वो भी पॉजिटिव हो और पर्पसफुल हो, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर निर्णय शक्ति बढ़ जाती है और किस प्रकार वो हमारे कार्य में, चाहे बोल में, हमारे कर्म में, हमारे ऑफिसेस में वो शांति की शक्ति कार्य आती है। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। बुद्ध अंदर से शांत थे इसलिए उनको देखकर उंगली माल भी क्या हो गया, शांत हो गया। तो अगर हम परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो अपने अंदर की स्व स्थिति को शांत, और हम देखते हैं कि अंदर से शांत रहने से बड़ी परिस्थिति एडवर्स सिचुएशन को भी हम कंट्रोल में, और हमारे संस्थान के जो फाउंडर ब्रह्मा बाबा थे, आप संस्थान की लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे और आदरणीय आशा दीदी जी आपको बताएंगी, उसमें भी आप जानेंगे कि कैसे बाबा ने हम सबको ये अपने जीवन से पाठ पढ़ाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे शांत रहा जाए। दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, चूंकि आप मेडिकल विंग से भी जुड़ी हुई हैं और दिल्ली जोन की मेडिकल विंग के आप एक एडिशनल जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और आप हेल्थ डिपार्टमेंट में भी इतने वर्षों तक रही, तो आपको तन का, मन का और आत्मा का, तीनों का गहरा अनुभव है जो जो आपके क्लासेस में झलका। अभी हमारे बीच आज के इस सत्र में हमारे सम्माननीय अतिथि दैवी भ्राता नर्मदेश्वर लाल जी, और आपके नाम में ही आपका परिचय छुपा हुआ है। नर्मदेश्वर शिव बाबा का ही एक नाम है और आप उनके लाल हैं, तो आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। 1998 बैच में आपने आईएएस ज्वाइन किया, और आपको एक खुशी की बात बताऊं कि जब आप आईएएस नहीं भी बने थे, जब आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे, उसी समय दिल्ली में आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे, उसी समय आपकी टीचर भी आपके साथ ही बैठी हुई हैं, आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी, जिन्होंने आपको विद्यार्थी जीवन में ही आपको 7 डेज का राजयोग का मंत्र दे दिया था। इतने वर्ष पूर्व लगभग 28 वर्षों का आपका प्रशासनिक सेवा का अनुभव है। आप बिहार के अनेक जिलों में जिलाधिकारी रहे, अनेक डिवीजन में कमिश्नर रहे, फिर वर्तमान समय आप बिहार के कृषि विभाग, बिहार सरकार के कृषि विभाग के प्रधान सचिव हैं। आज हमारे बीच पधारे हैं, भाई जी का दिल से एक बार हम पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और अब आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने हृदय के उद्गार, अपनी शुभ भावनाएं और अपने अनुभव हम सबके समक्ष रखेंगे देवी भ्राता श्री नर्मदेश्वर लाल जी।
इस प्रांगण में आज मुझे आकर के बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है कि मेरी जो यात्रा प्रशासनिक है वो 28 वर्षों की है, लेकिन उससे भी पहले करीब 33 वर्ष पहले दिल्ली में जब मुझे इच्छा हुई कि कुछ मेडिटेशन करना चाहिए और ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो वो लक्ष्मी दीदी थी और आज उनके बगल में बैठ करके मैं, जैसे आप मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था और पुराने दिनों की याद भी कर रहा था। तब लॉरेंस रोड सेंटर में मैं जाता था और उसके बाद दीदी के साथ माउंट आबू भी आया था पहली बार, उसके बाद दूसरी बार तो आईएएस बनने के बाद भारत दर्शन होता है तो भारत दर्शन के दौरान भी आना हुआ था, और तीसरी बार अभी आना हो रहा है। एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में बहुत सारे चैलेंजेज का सामना आपको करना पड़ता है। अभी हमारे सामने भ्राता बैठे हुए दीपक कुमार सिंह जी, बिहार के वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं, पीछे बैठे हुए सर, तो सर उससे इत्तेफाक रख रहे होंगे। इतनी सारी झंझावातों को आपको झेलना पड़ता है, कई बार आपके निजी जीवन में बहुत कुछ चल रहा होता है, वो सब पैरेलल चीजें चलती रहती है, सब पैरेलल चल रहा है। जैसे कैसे पिक्चर का स्टोरी में ये भी चल रहा है, विलन का भी स्टोरी चल रहा है, कॉमेडियन का भी चल रहा है, हीरो, इसी तरह पैरेलल स्टोरी चलता रहता है। आपके निजी जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही है, ऑफिस में समस्याएं चल रही है, हो सकता है आपके किसी दोस्त के यहां कोई समस्या है, तो इतनी सारी समस्याओं को बैलेंस करने के लिए अगर आपका जो थिंकिंग है, जो थॉट है, वो अगर शांति है, तो आप बेहतर ढंग से सभी फ्रंट पे आप मैनेज कर पाते हैं। और जो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है, जो हम कहते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो होता है, तो वो सही है। देखिए, वो पिक्चर का डायलॉग भी आपको याद होगा कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में जुट जाती है। ये सिर्फ बातें नहीं है, आपका अगर कोई बहुत पॉजिटिव कन्विक्शन है कि ये चीजें हमको चाहिए, हमको चाहिए, तो फिर वो थिंकिंग से फिर वो धीरे धीरे आपके एक्शन में भी आने लगता है और वो चीज फिर आप प्राप्त करते हैं उस चीज को। आप अभी जो दीदी बता रही थी कि हमको कोई भी चीजें बोलना है, सोचना है, विराम लेना है, पॉज लेना है, सांस लेना है, वो कितना जरूरी है, डिक्शन कितना जरूरी है। जो लोग बोलने पे जिनका चलता है पेशा, जो ड्रामेटिस्ट हैं, फिल्म एक्टर हैं, उनसे आप पूछिए तो डिक्शन क्या होता है, ये नहीं कि लगातार बोले जा रहे हैं। हो सकता है वो सोच के नहीं बोल रहे हैं, उनको लाइन दिया हुआ है, लेकिन तो भी वो पॉज लेते हैं ताकि डिक्शन सही होगा, तो फिर वो जो बोलना चाहते हैं, वो जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो चीजें वो मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को, वो ऑडियंस तक सही मायने में वो चीजें पहुंच जाती हैं। तो पॉज लेने का कितना महत्व है, और कितना हम अगर कोई चीजों को धीरे बोलते हैं तो वो सही बात है, जितना आप धीरे बोलते हैं उतनी बात आपके दूर तक जाती है, उतनी बातें आपकी सुनी जाती है, और जो मैसेज आप देना चाहते हो मैसेज पहुंच जाता है। प्रशासन में हम लोगों को कई बार बहुत सारा मैसेज देना पड़ता है, ऐसे करना है, वैसे करना है, अगर हम ठीक से क्लैरिटी नहीं रखेंगे तो नीचे जाते जाते वो चीजें कितना डिस्टॉर्ट हो जाती है और नीचे जाके कुछ और मीनिंग निकलता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो बहुत जरूरी है प्रशासन में, उसके लिए भी जरूरी है कि हम अपने पहले हम क्या मैसेज देना चाहते हैं वो मेरे दिमाग में पहले पूरी तरह से शांति रहेगी, तब हम वो सोचेंगे, फिर वो वर्ड में आएगा और फिर वो एक्शन में आएगा। बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं, आपको भी अगर आप सरकारी कर्मी हैं तो आपको भी वैसे पदाधिकारियों का सामना करना पड़ा होगा, बहुत फॉल लैंग्वेज यूज करते हैं, बहुत ही लाउड बात करते हैं या ऑफेंसिव बात करते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म होता है, बहुत लंबा दूर तक उसका रिजल्ट नहीं आता। जो बातें हम अच्छी तरह कर सकते हैं, बाकी एक्शन, ऐसा नहीं है कि सरकार में हमको सिर्फ अच्छा ही काम करना होता, जो नहीं काम करेगा उस पर तो कार्रवाई करना ही है, लेकिन बोल के मुख क्यों खराब करना, उसके लिए पेपर वर्क है, बहुत सा कागज, उनको कार्रवाई कर सकते हैं। जो वो लोग नहीं सुधरते हैं, नहीं काम करते, उन पर तो कार्रवाई होता ही है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मैं अपनी वाणी को खराब करूं ऑफिस में हल्ला गुल्ला करके, उसका कोई जरूरत नहीं। और इतना जरूर है कि जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय से अभी मैं देखता हूं, तो जैसा कि वो एक जो डिफरेंट थिंकिंग है, डिफरेंट एनर्जी है, उस सबको कंसंट्रेट करके वो मेडिटेशन में वो शक्ति है कि आप सबको एक साथ चैनलाइज करके एक साथ लगा सकते हैं। जैसा कि वो जो आपने उदाहरण सुना होगा, वो जो हम लोग वो जलाते थे पेपर, तो क्या बोलते हैं वो जो शीशा रहता है ऐसे रखते तो फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, आप ऐसे तो धूप आ रहा है लेकिन कोई भी कागज नहीं जलता, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं तो पूरा कंसंट्रेट एक जगह होकर पेपर जलने लगता। तो मेडिटेशन जब मैं दीदी के संपर्क में आया था तो उस समय फिर वो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें, पहली बार दिल्ली आया था, अब दिल्ली का इतना बड़ा महानगर का प्रेशर, पढ़ने का प्रेशर इधर उधर, तो फिर वो मेडिटेशन से वो पूरा थिंकिंग प्रोसेस एक जगह कंसंट्रेट होके तैयारी में लगा, और उसका फायदा सर्विस में आने के बाद भी बहुत हुआ, क्योंकि आप शांत दिमाग से फैसले लेते हैं, अच्छा फैसला लेते हैं। सर को याद होगा एक हमारी कमिश्नर मैडम होती थी, बहुत ही भयंकर, उनसे सब लोग डरते थे, खूंखार एकदम, वो सुबह 10 बजे बैठक बुलाती थी, तो 10 बजे दिन भर बैठक और रात भर चलता था, सुबह तक बैठक होता था, जो भी डीएम साहब जाते थे देख के ही उनका हालत खराब, मैडम क्या बोलेंगे क्या करेंगे। तो मैं जब भी मैडम के यहाँ जाता था, मैडम तुमको देख के तो हम एकदम प्रसन्न हो जाए, मैडम बोलती थी कि तुम जब आते हो हमको एकदम अच्छा लगने लगता है। तो हम तो कुछ नहीं करते थे मैडम, हम जाके बस बैठते थे आराम से। तो वो थिंकिंग का और हैप्पीनेस का वो एक प्रभाव पड़ता है, आप कुछ नहीं भी बोलेंगे तो पूरे रूम में सामने वाले पे आपके पॉजिटिव जो थिंकिंग है, पॉजिटिव एक्शन है, थॉट है, मेडिटेशन है, उसका प्रभाव पड़ता है। और मुझे लगता है कि जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन सभी को कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए कि कैसे अपने विचारों को समंजन कर रहे हैं, अगर उनके अगर अंतर मन में झंझावात है, टेंशन उनके मन में है, तो वो अपना जिंदगी तो उनका खराब होगा ही, लेकिन उनके एक्शन से, क्योंकि इतने सारे लोगों का उस पर प्रभाव पड़ता है, प्रशासनिक पदाधिकारी जो भी कुछ करेगा गड़बड़ तो नीचे तक आएगा। तो अगर उनको वो मेडिटेशन के शरण में जाते हैं, वो अपने विचारों को संतुलित करते हैं, और यहाँ जो टॉपिक आज का है जो पीस इन थॉट वर्ड एंड एक्शन, वो अगर करते हैं, न सिर्फ उनका जीवन बेहतर बनेगा बल्कि पूरे हमारे देश का, राज्य का, और जिसके लिए वो काम करते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी इतने बड़े पद पर रहते हैं, वो नीचे डाउन द लाइन वो परकोलेट होगा और नीचे भी दिखेगा कि अच्छी तरह से काम हो रहा है, कहीं पे भी कोई वायलेंस नहीं है, जो भी लोग आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से उनका ट्रीट किया जा रहा है, भले उनकी समस्या का समाधान नहीं हो। कई बार बहुत सारे लोग हम लोगों से ऑफिस में मिलने आते हैं, कई बार सभी समस्याओं का समाधान हम नहीं कर सकते, वो मेरे बस में नहीं है, क्योंकि हम लोग राजा तो है नहीं कि जो कुछ कर देंगे, जो नियम कानून के तहत होता है वो कर सकते हैं, कई बार नहीं होने लायक तो नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से सुन लेते हैं, अच्छी तरह से उनसे बात करते हैं, तो वो कम से कम वो आदमी समझता है कि चलो अच्छा, प्रसन्न होकर जा रहे हैं, वो समझ जाता है कि अब जितना हो सकता था ये कर दिए हैं, अब जो नहीं करने लायक हो तो हो नहीं सकता, वो बंदा संतुष्ट होकर जाता है और पॉजिटिव थॉट के साथ जाता है। और हम अगर ऑफिस में गुस्सा में है या कहां से चले आए हम, ऐसे कुछ वर्ड से या बॉडी लैंग्वेज से भी कई बार हम लोग ऑफेंसिव रहते हैं, ऐसा नहीं कि वर्ड से ही करते हैं, थिंकिंग मन में गुस्सा है आ गया चलिए, तो बॉडी लैंग्वेज से भी अगर हम लोग निगेटिव होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, न सिर्फ हमारे सबॉर्डिनेट पर पड़ता है बल्कि जो लोग हमसे मिलने आ रहे हैं उन पर भी पड़ता है, और फिर नीचे डाउन द लाइन वो परकुलेट होता जाता है, फिर वो जहां जाएगा वो ट्रांसफर करता है, उसको जहां मौका मिलेगा सबॉर्डिनेट को हम डांट देंगे तो हो सकता है हमको कुछ नहीं बोलेगा, घर जाके बच्चे को पीट देगा, तो कहीं ना कहीं वो जाता है, जो उसको कमजोर प्राणी मिलेगा वहां निकालेगा, तो वो निगेटिव जो है आप दे रहे हैं कहीं ना कहीं जाके निकल रहा है किसी निरीह प्राणी पे। तो वैसा अगर हम लोग नहीं करें और लगातार हम लोग जो आत्मा का जो खुराक है अच्छे विचार, उनकी शरण में आए, मेडिटेशन करें, और जो यहाँ पे सिखाई जा रही है बातें उसका हम लोग पालन करें, तो न सिर्फ मेरा जीवन बेहतर होगा बल्कि प्रशासन से जुड़े हुए पदाधिकारियों के लिए तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपना जीवन बेहतर करें, अपने परिवार का जीवन बेहतर करें, और आपके आसपास जितने मित्र मंडली है उन सबका जीवन बेहतर करें, और ओवरऑल पूरे समाज पूरे देश का एक बेहतर भविष्य हम लोग तय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने हमारे प्रशासन से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी हैं सब तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि अपने अपने लाइफ को व्यवस्थित करें, और उससे जो खुशियां जनरेट होगी, जो पॉजिटिव वाइब जनरेट होगी, वो उसका जो रिजल्ट है वो पूरे आम जनता तक जाएगा। तो इतना ही आज का मैं कहते हुए, और आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए यहाँ बुलाने के लिए सुबोध जी यहाँ बैठे हुए हैं, भास्कर जी सभी को धन्यवाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, और उम्मीद करता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए ये आयोजन हो रहा है ये सफल होगा, और इसकी जो बातें हैं, इसकी जो गूंज है, इसकी जो प्रतिध्वनि है, यहाँ से निकलकर पूरे भारत और पूरे विश्व तक जाएंगी। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही चंद शब्दों में आदरणीय भाई साहब ने आध्यात्मिकता का और हमारे कर्मों में जो शांति की शक्ति है उसका प्रभाव हमारे जीवन में, परिवार में और हमारे कार्यक्षेत्र में कैसे प्रोपगेट करता है उसका अपना प्रैक्टिकल अनुभव सुनाया, और हम आशा करते हैं और ये कामना करते हैं कि आप ऐसे ही अपने जीवन पथ पर अग्रसर रहें और आपकी उज्ज्वल भविष्य, और आप समाज की इसी तरह सेवा करते रहें। आदरणीय भ्राता जी का पुनः एक बार जोरदार तालियों से हम धन्यवाद करेंगे। और इससे पहले कि हम आज के सत्र का समापन करें, शाम में इसी हॉल में पुनः 4 बजे जो है हम सभी उपस्थित होंगे ना, पक्का? तो 4 बजे समय से आप जरूर उपस्थित हो जाएंगे। जो शाम का हमारा बहुत सुंदर विषय है, डिटेस्ट इन्वॉल्वमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, बीके उर्मिल दीदी आप भी दिल्ली से हैं, बहुत अच्छा सेशन आप सभी को कराएंगी। और आप जो आज ये ज्ञान यहां से सुन रहे हैं, इस ज्ञान को कि आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है और आपको ये दिन याद आएंगे, तो ये ज्ञान एक रोशनी, एक चिराग का काम करेगा जिसको आपको अपने नैनों में बसाकर यहां से ले जाना है। इस पर हमें बशीर बद्र साहब का 2 लाइन याद आता है, हाल ही में उन्होंने शरीर भी छोड़ा है 93 इयर्स होकर। बहुत अच्छा वो कहते हैं कि चरागों को आंखों में महफूज रखना, ये जो ज्ञान है ये चराग है, ये रोशनी है, चरागों को आंखों में महफूज रखना,
बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, उसमें ये ज्ञान, ये रोशनी, ये चिराग काम आएगी। बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी और होती ही रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग 3 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे।